पंचम अध्याय। दोनों परंपराओं में कथानक रूढ़ियाँ। भारत और ईरान की कथाएं और उनका आदान प्रदान। भारत कथाओं का देश है। सर्वप्रथम यहीं कथा को आधार बनाकर साहित्य का सृजन किया गया और यहीं से कथा साहित्य का प्रारंभ, प्रचार एवं प्रसार विश्व भर में हुआ। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में, मेरा यह मत देश प्रेम की किसी संकीर्ण भावना से प्रेरित होकर नहीं बनाया गया, न इसके मूल में प्राचीन प्रियता की कोई अहेतुक धारणा ही है। साहित्यिक इतिहास के सभी विद्यार्थी यह जानते हैं कि प्राचीन भारतीय कहानियाँ अपने समय के सभ्य संसार में कितना प्रभाव रखती थीं और उनका कितना ऋण संसार के कथा साहित्य पर है। एक, इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व के कथा साहित्य के विकास में भारतीय कथा साहित्य का पर्याप्त योगदान है। निसंदेह ऐतिहासिकता के विचार से भारतवर्ष कथा साहित्य का उद्गम स्थान है। दो, डॉक्टर सत्येंद्र के मतानुसार जो कहानियां हिंदी क्षेत्र में मिलती हैं वे बंगाल, बुंदेलखंड तथा दक्षिण भारत में ही नहीं जर्मनी, इटली आदि में भी मिलती हैं। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने यह माना है कि इन कहानियों का मूल उद्गम भारत में हुआ। तीन, एक, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आधुनिक साहित्य, इलाहाबाद, संवत 2007 विक्रम, पृष्ठ 188। दो, क, बलदेव उपाध्याय, वैदिक कहानियां, भूमिका, पृष्ठ 7। ख, ब्रह्मदत्त शर्मा, हिंदी कहानियों का विवेचनात्मक अध्ययन, आगरा, 1958, पृष्ठ 59। तीन, डॉक्टर सत्येंद्र, मध्ययुगीन हिंदी का लोकतात्विक अध्ययन, आगरा, 1960, पृष्ठ 139। वेद साहित्य की प्राचीन पुस्तकें हैं। वेदों में कथा का प्राचीनतम रूप मिलता है। यहाँ कथा कहानियाँ भी हैं और उनके बीज भी। मानवता के, पृष्ठ संख्या 314, सर्वाधिक पुरातन एवं सनातन ग्रंथ रत्न ऋग्वेद में प्रायः 30 आख्यानों का स्पष्ट निर्देश किया गया है, जिनमें से कतिपय आख्यान ये हैं। शुनाशेप 1:24, अगस्त्य और लोपा मुद्रा 1:179, गृत्समद 2:12, वशिष्ठ और विश्वामित्र 3:53, 7:33 आदि, सोम का अवतरण 3:43, त्यरुण और विषजान 5:2, अग्नि का जन्म 5:11, शयाश्व 5:32, बृहस्पति का जन्म 6:71, राजा सुदास 7:18, नहुष 7:95, अपाला 8:91, नाभा निर्दिष्ट 10:61-62, वृषा कपि 10:86, उर्वशी और पुरुर्वा 10:95, शर्मा और पणि 10:108, देवापि और शांतनु 10:98, नचिकेता 10:135। इनके अतिरिक्त दान स्तुतियों में अनेक राजाओं के नाम उपलब्ध हैं, जिनसे दान पाकर अनेक ऋषियों को उनकी स्तुति में मंत्र लिखने की प्रेरणा मिली। इन स्तुतियों में भी कतिपय आख्यानों की ओर स्पष्ट संकेत विद्यमान हैं। एक, ऋग्वेद से लेकर आज तक कथा कहानियों की अखंड परंपरा मिलती है। विषय वस्तु तथा रचना विधान के दृष्टि से समय समय पर उसमें अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते आए हैं। यहाँ तक कि पुरानी कथा और नई कहानी में आकाश पाताल का अंतर दृष्टिगोचर होता है, फिर भी उसे एक परंपरा के रूप में देखा जा सकता है। अतएव डॉक्टर प्रताप नारायण ने लिखा है, ऋग्वेद को ही आधुनिक कथा साहित्य का उद्गम स्थल माना जाता है। प्रायः सभी परवर्ती आख्यान ऋग्वेद में बीज रूप में उपलब्ध हैं। दो, सारांश यह कि ऋग्वेद, उपनिषद, धर्मसूत्र, रामायण, महाभारत, बौद्ध जातक, जैन कथाएं, पौराणिक आख्यान, बृहत कथा, कथा सरित सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश, प्राकृत तथा अपभ्रंश की कथाएं और अंततः आधुनिक युग की कहानियां इसी अखंड कथा परंपरा की विभिन्न स्थितियों की द्योतक हैं। इस प्रकार अनादिकाल से लेकर आज तक का समस्त भारतीय साहित्य कथा कहानियों का अतुल भंडार है। एक, हिंदी विश्वकोश, वाराणसी, संवत 2017 विक्रम, पृष्ठ 333। दो डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन हिंदी उपन्यास में कथा शिल्प का विकास लखनऊ 1959 पृष्ठ 113 पृष्ठ संख्या 315। हमारे विचार में कथा साहित्य के प्रेरणा स्रोत विशेषतः ढाई ग्रंथ हैं। इनमें से एक महाकाव्य रामायण है। रामायण में प्रायः एक ही सुसंबद्ध कथानक है। इतना होते हुए भी संदर्भ की भांति इसमें कई कहानियां और पिरोई हुई मिलती हैं। गंगा अवतरण तथा गौतम या अहल्या की दो प्रसिद्ध कहानियां तो बालकांड में ही मिल जाती हैं। रामायण से कथा लेने की प्रथा अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। महाकवि कालिदास का रघुवंश और तुलसीदास का रामचरितमानस ऐसी रचनाएं रामायण की ऋणी हैं। इस प्रकार असंख्य महाकाव्य नाटक आदि इसकी कथा के आधार पर रचे गए हैं। दूसरा ग्रंथ है महाभारत, जिसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत तो कहानियों का बृहत कोश है। इसमें प्रधान वस्तु के साथ दृष्टांत स्वरूप अनेक आख्यान और उपाख्यान आए हैं। इनके आधार पर ही परवर्ती साहित्यकारों ने अनेक महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की और इस प्रकार इनसे अपने काव्यों के लिए अखंड सामग्री प्राप्त की। स्वयं व्यास जी ने लिखा है, धर्मे हर्ते च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् एक, अर्थात जो कुछ इस ग्रंथ में है वह अन्यत्र भी है, किंतु इसमें जो नहीं है वह कहीं नहीं है। निस्संदेह महाभारत असंख्य चरित्रों की विशाल क्रीड़ा भूमि है। एक भी चरित्र ऐसा नहीं है जो किसी अन्य चरित्र से मेल खाता हो। एक एक चरित्र पर न जाने कितने ग्रंथ लिखे गए हैं। तीसरा ग्रंथ वृहत कथा आधा है, क्योंकि इसके कुछ ही भाग उपलब्ध हैं। कथा साहित्य की दृष्टि से यह शुद्ध कथाओं का बृहत संग्रह और अगाध भंडार है। गुणाढ्य द्वारा पैशाची भाषा में रचित इस अत्यंत प्राचीन और लोक प्रसिद्ध पुस्तक का मूल नाम बृहत कथा है। श्री भदंत आनंद कौशल्यायन ने बृहत कथा का आदि स्रोत जातक कथा साहित्य को माना है। दो एक महाभारत आदि पर्व, दो जातक, संपादक एवं अनुवादक श्री मदंत आनंद कौशल्यायन, प्रयाग, सन 1941 ईस्वी, प्रथम खंड, भूमिका, पृष्ठ 27, पृष्ठ संख्या 316। साहित्य में गुणाढ्य और बृहत कथा का उल्लेख अनेक बार हुआ है। सबसे पहले दंडी, छठी शती के अंत से आठवीं शती के आरंभ तक के काव्यादर्श में बृहत कथा का नाम आया है। भूत भाषा मयिम प्राहुर भूतार्था बृहत कथा एक। बृहत कथा के तीन अनुवाद या रूपांतर आज उपलब्ध हैं। एक बृहत कथा श्लोक संग्रह, इसके लेखक नेपाल निवासी बुद्ध स्वामी थे। दो बृहत कथा मंजरी, कश्मीर के राजा अनंत सन 1028-80 के राज्यकाल में महाकवि क्षेमेंद्र ने इस ग्रंथ की रचना की। कवि ने रामायण और महाभारत का सार भी रामायण मंजरी और महाभारत मंजरी के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे प्रतीत होता है कि उस काल में बृहत कथा का महत्व रामायण महाभारत जैसा ही रहा होगा। तीन कथा सरित सागर का रचयिता महाकवि क्षेमेंद्र ही का समकालीन एक अन्य कश्मीर निवासी सोमदेव भट्ट था। गुणाढ्य की कीर्ति केवल भारत ही में सीमित नहीं है, बल्कि बृहत्तर भारत में भी फैली हुई है। 875 ईस्वी के कंबोडिया के एक शिलालेख में इसका नाम आया है। दो अवांतर कालीन विश्व के कथा साहित्य पर उक्त लेखक के ग्रंथ का अमिट प्रभाव देखने को मिलता है। रामायण और महाभारत के समान यह आधा ग्रंथ भी कथा साहित्य का जाज्वल्यमान रत्न है, जिसका न केवल कहानी वरन साहित्य की अन्य विधाओं पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। श्री विष्णु प्रभाकर ने भी सोमदेव कृत कथा सहित सागर संक्षिप्त हिंदी रूपांतर की भूमिका में लिखा है। ऐसा माना जाता है कि साहित्य रामायण महाभारत के बाद कथा वस्तु के लिए जातकों और एक दंडी काव्यादर्श 1-38, दो क हंसराज अग्रवाल संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लाहौर 1947 पृष्ठ 196, ख वी वरदाचार्य संस्कृत साहित्य का इतिहास हिंदी अनुवादक डॉ. कपिल देव द्विवेदी इलाहाबाद पृष्ठ 172, पृष्ठ संख्या 317, बृहत कथा का ऋणी है। एक श्री गोवर्धनाचार्य विरचित आर्य सप्तशती के अनुसार भी रामायण और महाभारत के समान बृहत कथा भारतीय वाङ्मय की अपूर्व निधि है। दो, उसकी कथाओं के आधार पर संस्कृत के कई ग्रंथों का निर्माण हुआ है। कवियों, कथाकारों, नाटककारों आदि के लिए गुणाढ्य ने प्रभूत सामग्री प्रस्तुत की है। तीन, दशरूपक के रचयिता धनंजय 1000 ईस्वी ने भी बृहत कथा को रामायण और महाभारत के समान ही सुविख्यात माना है। चार, जिस प्रकार लोक कथाओं में गुणाढ्य का स्थान अग्रगण्य है, उसी प्रकार नीति कथाओं में विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र का स्थान सर्वोपरि है। इसका मूल्य विश्वविश्रुत है और इसका प्रभाव विश्व कथा साहित्य पर गहन तथा गंभीर पड़ा है। इसकी कथाओं का संकलन 5 भागों मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि, विग्रह, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षा कारिकत्व में किया जाने के कारण ही इसका नाम पंचतंत्र पड़ा। यहाँ पशु पक्षियों में मानव चरित्र की उद्भावना द्वारा सरस सूक्तियों, सरस उपदेशों तथा समाज की व्यवहारिक नीतियों का वर्णन हुआ है और पशु पक्षियों की रोचक एवं हृदयग्राही कहानियों के रूप में सदाचार और राजनीति के गूढ़ से गूढ़ सिद्धांत अत्यधिक सरसता से समझा दिए गए हैं। एक, सोमदेवकृत कथा सहित सागर, संक्षिप्त हिंदी रूपांतर, संपादक विष्णु प्रभाकर, रूपांतरकार गोपाल कृष्ण कौल, दिल्ली 1956, पृष्ठ 7। दो, श्री रामायण भारत वृहत कथा नाम कविन नमस्कुर्म त्रिस्त्रोता एव सरसा सरस्वती स्फुरित यर भिन्ना 1:34। तीन, क, प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे संस्कृत साहित्य की रूपरेखा कानपुर 1954, पृष्ठ 326-327। ख, प्रोफेसर वासुदेव हिंदी कहानी और कहानीकार वाराणसी 1957, पृष्ठ 28। चार, रामायण आदि च विभाव्य वृहत कथाम च दशरूपक 1:68। इन मनोरंजक कहानियों की सहायता से सुकुमार बालक भी अनायास ही इन पृष्ठ संख्या 318 सिद्धांतों को हृदयंगम कर सकते हैं। इनमें पशु पक्षी मनुष्यों के समान ही सारे कार्य करते हैं, मनुष्यों की भांति वे बोलते हैं, मनुष्यों सरीखे व्यवहार करते हैं और मनुष्यों की नाई परस्पर प्रेम, कलह, युद्ध या संधि करते हैं। निस्संदेह ऐतिहासिक काल की प्राचीनतम कहानियां पंचतंत्र की ही कहानियां हैं, जिनकी रचना डॉक्टर कीथ के अनुसार गुप्त काल से बहुत पहले हुई। जातक कथाओं का स्रोत पंचतंत्र की कहानियां ही हैं। एक, इस कथा ग्रंथ ने जो सर्वांशतः तथा मूलतः नीति परक एवं उपदेश प्रधान है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है और संसार की प्रायः समस्त प्रमुख भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं। पंचतंत्र का प्रथम अनुवाद 6वीं शती में ईरान के सासानी वंशीय न्यायप्रिय शासक खुसरो नौशीरवान 2 की आज्ञा से पहलवी भाषा में किया गया था। एक, वी नाउ कैन बी सर्टेन दैट सेवरल ऑफ द जातक टेल्स आर मियरली डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पंचतंत्र प्रोफेसर कीथ ए बी ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लंदन 1920 ईस्वी पृष्ठ 249। दो, ईरान के सासानी वंश के शासकों का समय 226 ईस्वी से 652 ईस्वी तक है। इस वंश के आदिल न्यायवान नौशीरवान का शासनकाल 531-571 है। वह न्याय, राज्य सुव्यवस्था, साहित्य प्रेम एवं विजयों के लिए विख्यात है। न्याय के लिए तो उसका नाम अक्षत है। उसकी न्यायप्रियता के विषय में यह प्रसिद्ध है कि जब वह अपने भव्य भवन का निर्माण करवाने लगा तो स्थान कुछ कम था। अभाव की पूर्ति के लिए बादशाह ने बगल में रहने वाली एक कृषकाय वृद्धा से कहा कि वह अपनी छोटी सी झोपड़ी की भूमि दे दे और उसके बदले में कहीं और स्थान ले ले, परंतु उसने हठ से काम लिया और बादशाह की एक न सुनी। नौशीरवान ने अपने प्रासाद को तो टेढ़ा मेढ़ा बनवा लिया, किंतु टस से मस न होने वाली बुढ़िया के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया और इस प्रकार न्याय को आँच न आने दी। पृष्ठ संख्या 319। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी उर्दू पुस्तक अरब और हिंदुस्तान में तल्लुकात में, जिसका हिंदी अनुवाद बाबू रामचंद्र वर्मा ने अरब और भारत के संबंध नाम से किया है, लिखा है, पुराने विद्वानों की यह प्रथा थी कि वे सदाचार, नीति और बुद्धिमत्ता की बातें कथाओं, कहानियों और उदाहरणों आदि के द्वारा बतलाया करते थे और कुत्तों, चूहों, बिल्लियों और कौओं के मुंह से मनुष्यों को समझाते थे। संस्कृत की एक विशेष पुस्तक जो फारसी और अरबी में इस दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हुई, कलेला दमना है, बैरूनी के अनुसार जिसका संस्कृत नाम पंचतंत्र है। इस्लाम के प्रचार से ईरान के सासानी बादशाहों के समय इस पुस्तक का संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ था। फिर अब्दुल्लाह बिन मुक्फफा ने हिजरी दूसरी शताब्दी में इसे अरबी रूप दिया था। अरबी में इस पुस्तक ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की और बादशाहों तथा अमीरों ने इसका इतना अधिक आदर किया कि इसके अरबी से फारसी में, फारसी से अरबी में, पद्य से गद्य में और गद्य से पद्य में कई अनुवाद होते रहे और कई प्रतियां बनती रहीं, और अनुवादक, कवि तथा लेखक लोग इनके अनुवाद, कविता और गद्य लेखन में अपना कौशल दिखाकर मुसलमान बादशाहों से बड़े बड़े पुरस्कार पाते रहे। हिजरी दूसरी शताब्दी के अंत में जब अरबी के अब्बान नामक एक कवि ने इसका अरबी पद्य में अनुवाद करके हारून रशीद के मंत्री जाफर बरमकी की सेवा में उपस्थित किया, तब उसने उसको 1,00,000 दरहम पुरस्कार दिया। एक अरबी भाषा से इस पुस्तक के संसार भर की भाषाओं में अनुवाद हुए। यूरोप, अफ्रीका और एशिया की कोई ऐसी साहित्यिक भाषा नहीं है जिसमें इसका अनुवाद न हुआ हो। इस पुस्तक के अनुवादों और प्रतियों के उलट फेर का स्वयं एक अच्छा इतिहास है। दो एक किताबुल बुजरा बल किताब जहुशियारी सन 1926 में वियना ऑस्ट्रिया से प्रकाशित पृष्ठ 259। दो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी अरब और भारत के संबंध अनुवादक बाबू रामचंद्र वर्मा प्रयाग 1930 पृष्ठ 136-137। मौलाना मासूद अली की पुस्तक हिंदुस्तान अरबों की नज़र में पृष्ठ संख्या 320 इस बात का कई बार उल्लेख हुआ है। पंचतंत्र का अनुवाद पहले फारसी और अरबी भाषाओं में हुआ, यथा पृष्ठ 5 पर इस पुस्तक में वर्णित है कि हिंदुस्तानियों के यहाँ तिबी फलसफा, चिकित्सा शास्त्र और अदब के फनून, साहित्य कलाएं हैं। इन्हीं से किताब कलीला दमन 1 ली गई है। इसका पहले फारसी और फिर अरबी में तर्जमा हुआ। दो पृष्ठ 316 पर उल्लिखित है नौशीरवान के दरबार में हिंदुस्तान की मशहूर किताब कलीला दमना का तर्जमा किया गया, शतरंज और शाह खिजाक ले जाया गया। 3 इत्यादि। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पंचतंत्र का अनुवाद सर्वप्रथम नौशीरवान के राज्यकाल में पहलवी भाषा में किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्री विष्णु प्रभाकर ने सोमदेव विरचित कथा सरित सागर संक्षिप्त हिंदी रूपांतर की भूमिका में लिखा है, भारत कथाओं का देश है, विश्व में कहानी का प्रचार यहीं से हुआ है, ईरानियों ने यहीं से इस कला को सीखा। 4 1 कलेला दमना नाम से यह प्रतीत होता है कि 6वीं शताब्दी में मूल पंचतंत्र का नाम कदाचित कर्टक और दमनक ही रहा हो, क्योंकि इसी नाम के दो सियारों का वर्णन पंचतंत्र की पहली पुस्तक में आया है। पंडित चंद्रशेखर संस्कृत साहित्य की रूपरेखा कानपुर 1964 पृष्ठ 321-322। 2 मौलाना मासूद अली नदवी हिंदुस्तान अरबों की नज़र में प्रथम भाग आजमगढ़ 1960 पृष्ठ 5। 3 वही पृष्ठ 316। 4 सोमदेव विरचित कथा सरित सागर संक्षिप्त हिंदी रूपांतर संपादक विष्णु प्रभाकर रूपांतरकार गोपाल कृष्ण कौल दिल्ली 1956 पृष्ठ 7। उपर्युक्त मंतव्य भ्रामक है क्योंकि कहानी कहने, लिखने या सुनने की प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में वर्तमान है, चाहे वह भारत का हो चाहे ईरान का पृष्ठ संख्या 321। ईरान में भी कथा कहानियां उसी प्रकार कही सुनी जाती रही हैं जिस प्रकार भारत में। वस्तुतः कहानी की कला को किसी ने किसी को नहीं सिखाया, और यदि कोई इसे सिखाने का दावा करता है तो वह हवा में बातें करता है। डॉक्टर नगेंद्र के विचारानुसार मुसलमानों के साधारण जीवन का तहजीब गुफ्तगु आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक मुख्य अंग है। 1 वे बातों ही बातों में कहानियों के खाके रूपरेखाएं पैदा कर देते हैं। फारसी साहित्य को दृष्टि में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ईरानी इस्लाम धर्म के अनुयायी बनने से पहले भी और बाद में भी कहानी कहने में सिद्ध हस्त थे। हमारे विचार में सभी देशों के साहित्यकारों ने स्वदेश तथा अन्य देशों की लोकप्रिय कथा कहानियों को निजी साहित्य में स्थान दिया है। प्रत्येक देश के कथा साहित्य के विकास में अन्य देशों की उन्नत एवं समृद्ध कहानी परंपरा का पर्याप्त योग रहा है, यथा बृहत कथा, पंचतंत्र आदि के अनुकरण पर विदेशों में इसी प्रकार की सहस्त्रों कथाओं का सृजन हुआ है। यूरोप की ईसप की कहानियां भारतीय पंचतंत्र ही के अनुकरण पर लिखी गई थीं। साहित्य में इस प्रकार का आदान प्रदान चिरकाल से चला आ रहा है और ईरान देश भी इसका अपवाद नहीं है। फारसी साहित्य के सुप्रसिद्ध सूफी कवि मौलाना रूम ने अपनी नीति परक उपदेशात्मक और सूफी तत्व चिंतन से परिपूर्ण मसनवी में पंचतंत्र की शेर और खरगोश विषयक प्रख्यात कथा को बड़े ही सहज रूप में अपनाया है। उन्होंने अपनी इस कथा का मूल स्रोत पंचतंत्र ही को माना है, जैसा कि निम्नोक्त छंद से प्रकट है। अज कलेला बाज खां ई किस्सा रा, व अंदरा किस्सा तलब कुन हिस्सा रा। दो, अर्थात इस किस्से को कलेला दमना से पढ़ और लाभ उठा। एक, डॉक्टर नगेंद्र, साकेत एक अध्ययन, आगरा, 1948, पृष्ठ 172। दो, मसनवी ए मौलवी ए मानवी, पैराहने यूसुफी, दफ्तरे अव्वल, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, 1947, पृष्ठ 82। अर्थात इस किस्से को कलेला दमना से पढ़ और लाभ उठा। यद्यपि यह कथा, जिसमें खरगोश शेर को कूप में उसका प्रतिबिंब दिखाकर उसे मौत, पृष्ठ संख्या 322, के मुंह में ठेलने में सफलीभूत होता है, पंचतंत्र में साधारण रूप से वर्णित है, तथापि मौलाना रूम अपूर्व कौशल तथा अद्भुत प्रतिभा के बल पर इसमें अनेकानेक गोह्य रहस्य के द्वार उन्मुक्त किए हैं। इसी प्रकार शाह नजफ अली सलोनी के हिंदी सूफी काव्य प्रेम चिंगारी की दोनों कथाएं पहलवी, फारसी भाषा के कुरान एक, अर्थात मौलाना रूम कृत मसनवी ए मौलवी मानवी से पूर्ण रूपेण प्रभावित हैं। कवि ने मसनवी की दो कथाओं का सफल उल्था अपनी साधारण बोलचाल की अवधी भाषा में किया है। कवि स्वयं लिखता है कि उसने मौलाना रूम के कुछ बैतों का तिलक बनाया है और उसे अपने विचारानुसार प्रेम चिंगारी नाम दिया है। मेरे ध्यान बसियो इकबारा, मौलाना रूमी उजियारा, चुन चुन कुछ बेते तिन केरी, लाल रतन सौ अधिक उजेरी, तिन बैतन कर तिलक बनाइयो, हिंदी भाषा में कही गायो, मन उपजा तस्कियो बिचारी, राख्यो नाम प्रेम चिंगारी। दो, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी के प्रारंभ में जीवात्मा को बांसुरी मानकर सूफी अद्वैतवाद का स्पष्टीकरण किया है। शाह साहिब ने बांसुरी जीवात्मा की हृदय विदारक विरह कथा को स्पष्ट, सहज एवं बोधगम्य भाषा में लिपिबद्ध किया है। आत्मा परमात्मा के वियोग में अत्यधिक व्यथित है। मौलाना रूम अपनी मसनवी का श्री गणेश करते हुए बांसुरी कथा के आरंभ में लिखते हैं, बश्नु अजने चू हिकायत मी कुनद, वज जुदाईहा शिकायत मी कुनद, कज नेस्ता ता मरा बबुरीदा अंध, अज नफीरम मर्दो जन नालीदा अंध। एक, लेवी आर पर्शियन लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन, लंदन, सन 1923 ईस्वी, पृष्ठ 57। दो, डॉक्टर सरला शुक्ल, जायसी के परवर्ती सूफी कवि और काव्य, लखनऊ, संवत 2013, विक्रम, पृष्ठ 535, पाद टिप्पणी एक, पृष्ठ संख्या 323। सीना खाहम शरह शरह अज फिराक, ता बगोयम शरह दर्दे इश्तियाक, हर कसे कु दूर मानद अज असलेखेश, बाज जोयद रोजगारे वसलेखेश। एक, अर्थात बांसुरी से विरह कथा सुनो, वह वियोग को गिला करती है। वह कहती है कि जब से मुझे वन से काटा गया है, मेरी चीत्कार से प्रभावित होकर नर नारियों ने अगाध अश्रुमोचन किया है। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे ही समान विरह से टूक टूक हृदय मिल जाए, ताकि मैं अपनी विरह व्यथा प्रकट कर सकूँ। जो अपने मूल से वियुक्त होता है, वह उससे मिलने की सदैव आकांक्षा रखता है। उपर्युक्त भावों की अभिव्यक्ति शाह साहिब ने इस प्रकार की है। निस्संदेह यथार्थ रूपांतर करने में वे निश्चित रूप से सफल हुए हैं। सुनो कथा बांसुरिया गावे, बिछड़न की गति रोय सुनावे, बनसो काट भई हम न्यारी, सबद सुनत रोवे नर नारी, छाती टूक टूक कह पाऊं, तो बिरहा के चोप सुनाऊं, पियसे मिल बिछुड़े जो कोई, फेर मिलन जो है नित सोई। दो, इस प्रकार शाह नजफ अली सलोनी ने मौलाना रूम की मसनवी में वर्णित हजरत मूसा पैगंबर और गड़रिया की कथा तीन का भी हिंदी रूपांतर करके प्रेम चिंगारी में उसे समाविष्ट कर दिया है। मसनवी में उक्त कथा संक्षेप में इस प्रकार है। एक, मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी ए मौलवी ए मानवी प्रारंभिक पंक्तियाँ। दो, डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य लखनऊ संवत 2013 विक्रम पृष्ठ 535। तीन, मसनवी ए मौलवी ए मानवी पैराहने यूसुफी द्वितीय भाग नवल किशोर प्रेस लखनऊ 1947 पृष्ठ 116। एक दिन हजरत मूसा ने मार्ग में एक चरवाहे को बड़े दैन्य स्वर में यह कहते सुना, मेरे प्यारे प्रभु तू कहाँ है, आ मैं तेरा चाकर बनूं, तेरे जीर्ण शीर्ण जूतों को टाकूं, कंघी करके केश विन्यास करूं, पृष्ठ संख्या 324, तेरे कपड़े सियूं, तेरे वस्त्र धोऊं, तेरे जुए निकालूं, मेरे प्यारे तेरे आगे दूध रखूं, यदि तू रोग ग्रस्त हो जाए तो मैं संबंधियों से भी अधिक परिचार करूं, तेरे हाथ चूमूं, पांव दाबूं और शयनागार को बुहार कर साफ करूं, और यदि मैं तेरा घर देख लूं तो सदैव अहोरात्र घी दूध और दही तुझे पहुंचाऊं और पनीर रोगनी रोटियां तथा स्वादिष्ट छाछ प्रस्तुत करूं। संक्षेप में, मेरा काम लाना हो और तेरा काम खाना, मैं अपने सब बकरे तुझ पर न्योछावर कर दूं। हे परम प्रियतम, तेरे विरह में मेरी व्याकुलता चरम को पहुंच गई है। वह चरवाहा इस प्रकार अनर्गल बातें कह रहा था। हजरत मूसा ने पूछा, अरे तू ये बातें किससे कह रहा है? गडरिये ने उत्तर दिया, उससे जिसने हमें जन्म दिया, यह पृथ्वी और आकाश रचे। हजरत मूसा ने कहा, अरे मूर्ख, ये तो अंड बंड और ऊट पटांग बातें हैं, अपने मुख में रूई ठूस, तेरे कुफ्र की दुर्गंध समस्त संसार में फैल रही है। यदि तू ऐसी व्यर्थ की बातों को बंद न करेगा तो लोग तुझे भस्मीभूत कर देंगे। प्रभु ऐसी सेवा शुश्रूषा से मुक्त है। खाए पिए तो वह जिसका शरीर हो, वस्त्र जूते आदि तो वह धारण करे जो देहधारी हो, प्रभु तो निराकार है। चरवाहे ने कहा, ए मूसा, तूने मेरा मुंह बंद कर दिया और मारे लज्जा के मेरी जान जला डाली। यह कहकर उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, एक सर्द आह भरी और वह जंगल की ओर चला गया। तब ईश्वर ने हजरत मूसा को यह संदेश भिजवाया, तुमने मेरे सेवक को मुझसे पृथक कर दिया, तुम नबी हो, अतः तुम्हारा कर्तव्य भूली भटकी आत्माओं को मुझसे संयोग कराना है, वियोग कराना नहीं। यथासंभव तुम्हें मेरे प्रेमियों को मुझसे वियुक्त नहीं कराना चाहिए। उस भोले प्रेमी के लिए प्रेम करना श्लाघनीय है, तुम्हारे द्वारा उसका मुझसे वियुक्त करना निंदनीय है। उसके लिए वह अमृत है, तुम्हारे लिए यह विष है। उसके लिए वह ज्योति है, तुम्हारे लिए यह अग्नि है। उसके लिए वह पुष्प है, तुम्हारे लिए यह कंटक है। उसके लिए वह बात अच्छी है, तुम्हारे लिए यह बात बुरी है। ए मूसा, प्रेमियों के ढंग और हैं, बुद्धिमानों के ढब और हैं। जब हजरत मूसा ने प्रभु की भर्त्सना को सुना तो वे चरवाहे को पृष्ठ संख्या 325 खोज निकालने के लिए वन की ओर अग्रसर हुए। मारे मारे फिरने और वन की खाक चानने के पश्चात वे चरवाहे के पास पहुंच गए और क्षमा याचना की। उन्होंने उससे कहा कि अब जो जी में आए कहो। चरवाहे ने उत्तर दिया, वह उनकी पहली डांट डपट से अत्यधिक प्रेरित होकर परम प्रियतम के साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील हो गया और अब उसके बीच से प्रिय और प्रेमी की द्वैत भावना मिट गई है। मौलाना रूम ने कथा का आरंभ इस प्रकार किया है, दीद मूसा यक शबाने रा बराह, कु हमें गुफ्त ए खुदा ए अल्लाह, तू कुजाई ता शबम मन चाकरत, चारुकत दोजम कुनम शाना सरत, ए खुदाए मन फदायत जाने मन, जुमला फरजंदा ओ खानो माने मन, जामा आत दोजम सपुष हायत कशम, शीर पेशत आवरम ए मुहतशम, वर तुरा बीमारी ए आयत बपेश, मन तुरा गमखार बाशम हम चुखेश। एक, अर्थात हजरत मूसा ने गडरिया को मार्ग में देखा। वह कह रहा था, ए खुदा ए अल्लाह तू कहाँ है, आ मैं तेरा चाकर बनूं, तेरे जूते सीऊं और तेरे सिर में कंघी करूं। ए खुदा, मैं अपनी जान तुझ पर न्योछावर करता हूँ, मेरा समस्त परिवार तुझ पर न्योछावर है। हे मेरे परम प्रियतम तू कहाँ है, आ मैं तेरे सिर में कंघी करूं, तेरी जूतियाँ टाकूं और सीऊं, तेरी जुएं चुनूं, कपड़े सीऊं, तेरे आगे दूध लाकर रखूं, यदि तू अस्वस्थ हो जाए तो मैं संबंधियों की भांति तेरी टहल सेवा करूं। एक, वही पृष्ठ 116। कवि शाह नजफ अली तिलक बनाने में कहाँ तक सफल हुए हैं निम्न पंक्तियों से स्पष्ट हो जाएगा, जिनमें उक्त भाव अभिव्यक्त किए गए हैं। पृष्ठ संख्या 326। मूसा नबी चले मगमाहा, लखै एक चरवाहा ताहा, बाउर भेषु प्रेम मदमाता, भाषय यह कि ए जगदाता, कहाँ कहाँ तुई प्रीतम मोरे, सेवक तोर रहो कर जोरे, पग पनही टूटी लखी पाऊँ, टाँक सुधार तो ही पहिराऊँ, कंघी करो केश निखारो, झारो बार सवार सुधारो, कापड़ तौर धाय उजियारे, चीलर काढ़ करो सब न्यारे, अच्छत दूध लाए औटाऊँ, घाल कटोरा तो ही पिलाऊँ, जो कुछ रोग हाय तोरी काया, मीत करे जस मीत की दाया, तस धर चीत मीत होई तोरा, संगु देव तिहरो निस भोरा। एक, फारसी साहित्य का आधार कुरान में वर्णित बहुत से किस्से भी हैं। हजरत इब्राहिम, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत ईसा आदि विषयक किस्सों को विशेषतः अपनाया गया है। फारसी साहित्य के प्रख्यात सूफी कवि जामी ने कुरान में वर्णित यूसुफ जुलेखा की कथा का आश्रय ग्रहण किया और यत्र तत्र जहाँ कहीं भी उसको कल्पना करने का अवकाश मिला उसने उसका उचित उपयोग निज मसनवी यूसुफ जुलेखा में किया। हिंदी सूफी कवि निसार ने उक्त मसनवी की कथा को अपने ग्रंथ यूसुफ जुलेखा का विषय बनाया। अरबी, तुर्की, संस्कृत आदि भाषाओं के अतिरिक्त फारसी में भी गति दो होने के कारण उसने जामी का पूर्णतया सफल अनुकरण किया। हमारे विचार में निसार कृत यूसुफ जुलेखा कवि जामी की मसनवी यूसुफ जुलेखा का प्रतिरूप है। एक, डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य, लखनऊ, संवत 2013 विक्रम, पृष्ठ 536-537। दो, शेख निसार ने अपनी योग्यता एवं काव्य कुशलता की ओर संकेत करते हुए आदि खंड में लिखा है कि उसने 7 अनुपम ग्रंथों की रचना की जो हिंदी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, अरबी आदि में लिखे गए। 7 ग्रंथ अनूप सुहाए, हिंदी और पारसी सुहाए, संस्कृत तुर्की मन भाए, अरबी और फारसी सुहाए, यूसुफ जुलेखा आदि खंड। पृष्ठ संख्या 327। निसार की कृति की प्राय प्रत्येक पंक्ति पर जामी के ग्रंथ का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता है। श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यूसुफ जुलेखा की कथा पद्मावत आदि अन्य कथाओं से एक महत्वपूर्ण विभिन्नता रखती है और उस पर ध्यान देना आवश्यक है। अन्य सभी प्रेम गाथाएं या आख्यान काव्य जो अभी तक प्राप्त हो चुके हैं किसी न किसी लोक प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक घटना का आश्रय लेकर रचे गए हैं, पर यूसुफ जुलेखा की कथा भारतीय इतिहास या संस्कृति से कोई संबंध नहीं रखती। इसका आधार या आश्रय पूर्णतया विदेशी है। इसमें जिस समाज का चित्र खींचा गया है वह भी भारतीय न होकर ईरानी या मिस्री है। एक, परंतु शेख निसार ने जिस समाज का चित्र अंकित किया है वह सर्वथा मिस्री है न कि ईरानी। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने 16 आने ठीक लिखा है कि कवि निसार ने अपने कथानक को शामी भंडार से चुना है और उसे स्वभावतः विदेशी क्षेत्रों में ही विकसित भी किया है। दो, निस्संदेह उक्त कथा का संबंध मिस्र एवं फिलिस्तीन देश के नगर किनान से है जिसे हजरत नूह ने बसाया था। तीन, कवि नसीर ने भी अपने काव्य प्रेम दर्पण के लिए जामी कृत यूसुफ जुलेखा को आदर्श बनाया। कवि निसार और कवि नसीर दोनों पारिवारिक क्लेश 4 से आत्यंतिक रूप से आक्रांत थे। यद्यपि ग्रंथ रचना की दृष्टि से दोनों में प्रायः 125 का अंतर है। एक, श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी हिंदी प्रेम गाथा काव्य संग्रह इलाहाबाद 1953 पृष्ठ 321। दो, श्री परशुराम चतुर्वेदी सूफी काव्य संग्रह प्रयाग शक 1880 पृष्ठ 200। तीन, किना नगर जो नूह बसाया तहां नबी याकूब सुहावा यूसुफ जुलेखा आदि खंड। चार, कवि निसार अपने एकमात्र वयस्क पुत्र के शरीरांत से अत्यधिक व्यथित हुए। कवि नसीर को माता पिता 3 पत्नियों तथा 3 पुत्रों का वियोग दुख उठाना पड़ा। 5, निसार ने विक्रम संवत 1847 में और कवि नसीर ने विक्रम संवत 1974 में अपने अपने ग्रंथों की रचना की। तथापि दैव योग पृष्ठ संख्या 328 से दोनों के हृदयों में इस कथा विशेष ही को अपनाने की प्रवृत्ति जगी। कवि नसीर ने भी कवि निसार के सदृश सामग्री और आदर्श दोनों दृष्टियों से जामीकृत यूसुफ जुलेखा का अनुकरण किया। समूचे ग्रंथ में केवल एक ही स्थान पर नसीर ने मौलिकता से काम लिया है, उसने सौदागर एक की कन्या का उल्लेख किया है जो सुंदरता की साकार प्रतिमा है। परम लावण्यमयी होते हुए भी वह यूसुफ के अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वस्तुतः इस घटना के समावेश से कवि का उद्देश्य यूसुफ का बेजोड़ सौंदर्य प्रकट करना है। शेख रहीम कृत भाषा प्रेम रस में भी एक स्थान पर दृष्टांत रूप में यूसुफ जुलेखा की प्रेम कथा वर्णित है। नायक प्रेम सेन नायिका चंद्रकला से इस कथा का वर्णन करता है। वह कुरान में उल्लिखित प्रेमाख्यान के समान ही है। शेख रहीम ने उपर्युक्त भाषा प्रेम रस में कुरान में वर्णित आदम और इबलीस की कथा दो का भी उल्लेख किया है। एक, वह सौदागर जिसका गुलाम कुएं से पानी भरने आया था, जब यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला गया तो सौदागर ने उसके भाइयों से उसको मोल ले लिया। सौदागर यूसुफ को लेकर मिस्र देश पहुंचा, वहां उसकी लड़की यूसुफ पर मुग्ध हुई। यह घटना सर्वथा कवि द्वारा कल्पित है। कुरान या जामीकृत यूसुफ जुलेखा में सौदागर की कन्या का कोई उल्लेख नहीं। दो, हजरत आदम आदि मानव हैं और सब मानव उनकी संतति हैं। जब ईश्वर ने उनको उत्पन्न करने का निश्चय किया तो हजरत अज़राइल फरिश्ता को आदेश दिया कि नर्म, सख्त, सुर्ख, सफ़ेद, स्याह और अन्य प्रत्येक प्रकार की मिट्टी से एक एक मुट्ठी भर कर लाओ। इस मिट्टी से हजरत आदम का खाकी पुतला तैयार हुआ। इस पुतले में ईश्वर ने रूह फूंकी, तब हजरत आदम पूर्ण मानव बन गए। ईश्वर ने उन्हें सब वस्तुओं के नाम सिखाए और वे समस्त विद्याओं में निपुण हो गए। फिर ईश्वर ने फरिश्तों को आदेश दिया कि वे उनके सम्मुख शीश नवाएं। सब फरिश्तों ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, परंतु अज़राइल यानी इबलीस ने, जो जिन्न था, आज्ञा को न माना। उसने तर्क दिया कि वह हजरत आदम से श्रेष्ठ है क्योंकि वह आग से निर्मित है और हजरत आदम मिट्टी से बने हैं। अतः इस अवज्ञा के दंड स्वरूप वह शैतान संज्ञा से कुख्यात हुआ। हजरत आदम ईश्वर के आदेशानुसार स्वर्ग में रहने लगे। यहीं हवा के साथ उनका पाणि ग्रहण हुआ। ईश्वर ने उन दोनों को स्वर्ग के वृक्ष विशेष का फल न खाने का आदेश दिया। शैतान हजरत आदम से बदला लेने की ताक में था। वह सांप के पास गया। उस समय सांप स्वर्ग का जीव था। शैतान ने सांप को गांठा और उसकी सहायता से स्वर्ग में जा पहुंचा। वहां हजरत आदम के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके वृक्ष विशेष का निषिद्ध फल खाने के लिए प्रेरित किया, किंतु हजरत आदम ने उसकी एक न सुनी। तत्पश्चात शैतान ने हवा को बहकाया और वे उसके झांसे में आ गईं। उसने उस वृक्ष के कुछ वर्जित फल आप खाए और कुछ हजरत आदम को भी खाने के लिए विवश किया। फलों का उदरस्त होना ही था कि अवज्ञा का फल मिल गया। ईश्वर ने हजरत आदम, हवा, सांप और शैतान चारों को मृत्यु धरा पर पटक दिया। पृष्ठ संख्या 329। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि हिंदी कवियों, विशेषकर परवर्ती सूफी कवियों ने कुरान की एव अरब तथा फारस देशों की कथाओं को भी अपने काव्यों का आधार बनाया है। डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में 18वीं शताब्दी और उसके बाद के कवियों ने यूसुफ जुलेखा आदि ईरानी कहानियों का भी आश्रय लिया है। एक, परवर्ती सूफी कवियों के विषय में प्रोफेसर राम पूजन तिवारी ने भी हिंदी सूफी काव्य की भूमिका में लिखा है, अरब या फारस की कहानियां अथवा कुरान आदि में वर्णित कथाओं को इन परवर्ती सूफी कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया है। दो, एक, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, दिल्ली, सन 1955 ईस्वी, पृष्ठ 267। दो, प्रोफेसर राम पूजन तिवारी, हिंदी सूफी काव्य की भूमिका, पटना, सन 1960 ईस्वी, पृष्ठ 272। अतएव कथा कहानियों का आदान प्रदान होना अनिवार्य तथा पृष्ठ संख्या 330 अपरिहार्य है। एक, भारत और ईरान का कथा साहित्य चिरकाल से परस्पर प्रभावित होता रहा है। निसंदेह भारत की पशु पक्षी विषयक ऐसी कथाएं जिनमें पशु पक्षियों के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न नैतिक पक्षों का उद्घाटन अद्भुत रीति से हुआ है और जो देश देशांतरों में लोकप्रिय हुई, उन्हें ईरान ने सर्वप्रथम अपनाया। कथानक रूढ़ी। साहित्यिक अभिप्राय तथा कथानक रूढ़ी एक ही अर्थ को द्योतित करते हैं। कथानक रूढ़ी अंग्रेजी के मोटिफ शब्द का पर्याय है। प्रत्येक देश के साहित्य में अनुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण कुछ साहित्य संबंधी रूढ़ियां बन जाती हैं और यांत्रिक ढंग से उनका प्रयोग साहित्य में होने लगता है। इन सभी रूढ़ियों को साहित्यिक अभिप्राय कहते हैं। दो, कथानक के विस्तार के लिए लोक कथाओं के कुछ ऐसे सामान्य तथा सार्वभौम तत्वों को ग्रहण किया जाता है जिससे सजातीय कृतियों में एक रूपता का आभास मिलता है। ये तत्व ही कथानक रूढ़ियां हैं। कथानक रूढ़ी लोक विश्वास पर आधारित वस्तुतः एक ऐसा बिंदु है जिससे कथानक को नया मोड़ और अभिप्सित दिशा मिलती है। यह एक ऐसा विचार है जो विभिन्न कृतियों में समान परिस्थितियों और मनस्थितियों को द्योतन करता है। इसके स्थानापन्न के रूप में उपलक्षण, प्रयोजन, संकेत तथा प्रतीक आदि अनेक शब्द प्रचलित हैं। एक, पूर्ववर्ती हिंदी सूफी कवि कुतुबन ने भी कहा है, यह मृगावती की कथा पहले हिंदुओं में प्रचलित थी, हिंदुओं से तुर्कों में गई। मैंने इस कथा का रहस्य समझाया है। इसमें योग के अतिरिक्त श्रृंगार तथा वीर रसों का समावेश है। पहले हिंदुई कथा अहई, फिन रे गान तुरकई ले गहई, फिन हम खोल अर्थ सब कहा, जोग सिंगार वीर रस अहा। डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे, मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, इलाहाबाद, पृष्ठ 68-69। दो, हिंदी साहित्य कोश, बनारस, संवत 2015, पृष्ठ 183-86। कुछ कतिपय विद्वानों ने इसे कथा परिधान या कथा रूप, पृष्ठ संख्या 331 की संज्ञा से भी अभिहित किया है, परंतु हमारे विचार में कथानक रूढ़ी शब्द ही सर्वश्रेष्ठ है। कथानक रूढ़ियां या तो लोक विश्वास पर आधारित होती हैं अथवा कवि द्वारा कल्पित। ये प्राचीन चरित काव्यों, आख्यानों तथा कथा काव्यों की अविच्छिन्न तथा अनिवार्य अंग बनकर आई हैं। इनका उपयोग कथानक में प्रभव विष्णुता, रोचकता, सरसता, प्रवाहमयता तथा सौंदर्य संवर्धन के लिए हुआ है। इस दृष्टि से इनका महत्व अत्यधिक है। वस्तुतः इनके बिना प्राच्य साहित्यांगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यथार्थता से ये कथा का टर्निंग पॉइंट है। प्राचीन भारतीय लोक कथाओं एवं उनसे प्रभावित अनेक कथा काव्यों में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। ये भारतीय प्रेम काव्यों में तो पाई ही जाती हैं, साथ ही यूनानी एवं अन्य पाश्चात्य काव्यों में भी इनका बाहुल्य है। एक, सर्वप्रथम कथानक रूढ़ियों की ओर हिंदी जगत का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय आचार्य प्रवर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्राप्त है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में इनके महत्व से परिचित कराया। आपके अनुसार कुछ रूढ़ियां ये हैं। दो, एक, कीथ ए बी ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, लंदन, सन 1920 ईस्वी, पृष्ठ 365। दो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, पटना, सन 1952 ईस्वी, पृष्ठ 74-75। एक, कहानी कहने वाला सुग्गा। दो, एक, स्वप्न में प्रिय का दर्शन। दो, चित्र में देखकर किसी पर मोहित हो जाना। तीन, भिक्षुओं या बंदियों के मुख से कीर्ति वर्णन सुनकर प्रेमासक्त होना इत्यादि। तीन, मुनि का शाप। चार, रूप परिवर्तन। पाँच, लिंग परिवर्तन, पृष्ठ संख्या 332। 6, परकाया प्रवेश। 7, आकाशवाणी। 8, अभिज्ञान या सहिदानी। 9, परिचारिका का राजा से प्रेम। 10, नायक का औदार्य। 11, षड ऋतु और 12 मासा के माध्यम से विरह वेदना। 12, हंस, कपोत आदि से संदेश भेजना। 13, घोड़े का आखेट के समय निर्जन वन में पहुंच जाना, मार्ग भूलना, मानसरोवर पर किसी सुंदरी स्त्री या उसकी मूर्ति का दिखाई देना, फिर प्रेम और प्रयत्न। 14, विजन वन में सुंदरियों से साक्षात्कार। 15, युद्ध करके शत्रु से या मत्त हाथी के आक्रमण से या कापालिक की बलि देवी से सुंदरी स्त्री का उद्धार और प्रेम। 16, गणिका द्वारा दरिद्र नायक का स्वीकार और गणिका माता का तिरस्कार। 17, भरंड और गरुड़ आदि के द्वारा प्रिय युगलों का स्थानांतरकरण। 18, पिपासा और जल की खोज में जाते समय असुर दर्शन और प्रियावियोग। 19, ऐसे शहर का मिल जाना जो उजाड़ हो गया हो। 20, प्रिया की दोहत कामना की पूर्ति के लिए प्रिय का असाध्य साधन का संकल्प। 21, शत्रु संतापित सरदार को उसकी प्रिया के साथ शरण देना और फलस्वरूप युद्ध इत्यादि। आचार्य द्विवेदी जी द्वारा दी हुई कथानक रूढ़ियों की उक्त सूची में कुछ अत्यंत प्रचलित रूढ़ियां और जोड़ी जा सकती हैं, यथा एक, देव मंदिर में नायक नायिका का मिलन, वरदान प्राप्ति अथवा अभीष्ट की अवाप्ति। दो, नायक के पिता का प्राय पुत्र न होने से चिंता निमग्न रहना, पिता के जप तप दान पुण्य आदि के परिणाम स्वरूप नायक का जन्म होना। पृष्ठ संख्या 333। तीन, सागर में तूफान आना और जहाज का नष्ट भ्रष्ट होना, परंतु नायक का बच निकलना। चार, योगी वेश में प्रिया की प्राप्ति के लिए प्रयास एवं प्रयत्न करना। पाँच, नायक नायिका की परीक्षा सहायता के लिए किसी योगी योगिन अथवा पार्वती महादेव का आना। छः, अप्सराओं का कथा में महत्वपूर्ण कार्य करना। आठ, सात, मानसरोवर का चित्रण करना। आठ, प्रतीकात्मक स्वप्नों द्वारा भावी दुर्घटना अथवा भावी मंगल की सूचना। नौ, कथानक विस्तार के लिए मिलन के पश्चात अचानक वियोग, देवी देवताओं अथवा अन्य अलौकिक शक्तियों की सहायता से पुनर्मिलन। दस, विरहग्रस्त नायक अथवा नायिका के लिए वैद्य ओझा आदि को बुलाना। ग्यारह, नायक का कभी कभी नायिका से भिन्न किसी युवती की रक्षा राक्षस दानव आदि से करना। बारह, सौतिया ऋष्या का वर्णन। तेरह, नायक की दो पत्नियों का होना एवं उन दोनों का नायक की मृत्यु पर सती हो जाना। चौदह, काल्पनिक पात्रों के रूप में राक्षसों का उपयोग। पंद्रह, सिंघल द्वीप कजरी बन आदि का वर्णन। सोलह, राजा का चक्रवर्ती होने के लिए किसी राजकुमारी से विवाह करना। सत्रह, कुटनी का प्रसंग। अठारह, आखेट वर्णन। उन्नीस, नायक नायिका के मध्य पत्र व्यवहार इत्यादि।